الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد چند ملفوظات سنائے جاتے ہیں اکابر اولیاء اللہ میں حکیم الامت حضرت ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ظہر کی نماز میں کسی صاحب کا موبائل فون آن تھا تو بار بار گھنٹی بجتی رہی اور اس کی وجہ سے ہر ایک کی نماز میں تشویش پیدا ہوئی, سب کا دھیان بڑھ گیا. خیر, ایسا تو فوری طور پر خیال بھی آیا کہ کچھ کہوں, لیکن کوئی فائدہ بھی اس کا اتنا نہیں ہے. حسن ظن تو ہے, اچھا گمان, کہ مسئلہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ بھائی جب نماز ہو تو موبائل فون بند کرنا چاہیے, سوئچ آف کرنی چاہیے, یا کم از کم سائلنٹ پر رکھ دینا چاہیے. ان کو بھی اس کا خیال ہوگا, لیکن بعض مرتبہ بے خیالی میں آدمی مسجد میں آ جاتا ہے اور فون آن رہ جاتا ہے تو پھر گھنٹی بجنی شروع ہوتی ہے. اصل تو یہ ہے کہ انسان جب مسجد میں آئے تو دنیا کو باہر چھوڑ کر آئے, اور موبائل فون بھی ایک طرح کی دنیا ہی ہے. پہلے زمانے میں یہ بلا نہیں تھی, بس اتنا تھا کہ آدمی ذہن کے اعتبار سے کچھ تو ہوتا رہتا تھا, تو کوئی دکان لے کر مسجد میں آ گیا, کوئی کچھ خیالات لے کر آ گیا. اب تو باقاعدہ دنیا ہی لے کر آ رہا ہے. تو پھر بطور تنبیہ کے اور کچھ اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنے کو جی چاہا کہ بھائی پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ اگر گھر سے نکلے ہیں اور پھر گھر واپس جانا ہے تو موبائل فون گھر چھوڑ کر آئے. کیوں, تھوڑی دیر کے لیے انسان اتنا عادی بھی نہ بن جائے کہ ہر وقت موبائل فون ساتھ ہی ہو. دیکھو دنیا میں بھی بہت سے اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں موبائل فون بند کرنا ہی کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں 2-4-6 گھنٹے کا 10 گھنٹے کا, تو وہاں یہ قانون ہے کہ, اور قانون کیا, وہاں فون چلتا ہی نہیں ہے. تو فوراً کہہ دیتے ہیں بھائی اپنا موبائل فون جو ہے وہ بند کر دو. اب 8-10 گھنٹے بغیر موبائل فون ہی کے تو آدمی رہتا ہے نا. اسی طرح کوئی ایمرجنسی علاقے میں جائے, کوئی خاص آفسیں ہوتی ہیں جیسے پولیس کی آفس ہوتی ہے اور اس طرح کی, وہاں بھی یہ قانون ہوتا ہے کہ بھائی موبائل فون آپ کا بند رہنا چاہیے. اسی طرح آدمی یہ سوچ لے کہ بھائی موبائل فون جو ہے, ہم جا رہے ہیں اللہ کے گھر میں, بڑے شہنشاہ کا, بڑے بادشاہ کا دربار ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جا تو رہے ہیں نماز پڑھنے اور ہمارے کسی چھوٹے سے نامناسب عمل سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. عموماً موبائل فون میں اب جو رینگ بجتی ہے, جو ٹون استعمال ہوتا ہے, جو آتا ہے, بہت سا حصہ اس میں اس کا میوزک اور گانے کی شکل کا ہوتا ہے. تو مسجد کے اندر اس طرح کا ٹون بجے, آواز پیدا ہو میوزک کی, تو یہ تو پھر بہت ہی بری بات ہو جاتی ہے, اللہ بچائے. اور یہاں اگر آپ عادت ڈالیں گے موبائل فون بند کرنے کی, تو پھر جب آپ حرم شریف جائیں گے, مدینہ شریف جائیں گے, تو وہاں بھی آپ اس عادت کو نہیں بھولیں گے. ورنہ پھر وہ اللہ کا گھر جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ملتا ہے, وہاں انسان اس کو استعمال کرے گا. گیا تو تھا اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے, مگر دھیان ہی دوسری طرف رہا تو اللہ کی محبت کیا پیدا ہوگی؟ عبادت میں اخلاص, دھیان, خشوع, خضوع, उसी वक्त पैदा होता है जब आदमी थोड़ा सा फिक्र भी करे, कोशिश करे। इसलिए इसी का एहतमाम करना चाहिए। कभी गलती से होता है, हम ये नहीं कहते कि उसने आमदन किया होगा, जानबूझकर किया होगा। तो पहला एहतमाम ये। उसके बाद फिर अगर नमाज में दाखिल हो गया और इत्तेफाक से रिंग बजी, तो पहली अगर रकाती में शामिल है, बज गई, तो हमारा मशवरा यह है कि अपनी नमाज तोड़ दे और मोबाइल फोन बंद करके फिर नमाज में शुरू हो जाए। और उससे पहले यह है कि अगर इस तरह रखा है मोबाइल फोन के एक हाथ की हरकत से वो बंद हो जाता हो, तो फिर उस तरह भी बंद कर लेना चाहिए। लेकिन अगर नहीं होता हो तो फिर उस आदमी का अपनी नमाज तोड़ देना, ये जितने नमाजी उन सब की नमाज के बचाने के लिए ये एक अच्छा अमल होगा। आदमी ये कर सकता है। अब लोग सुनने में नमाज में दाखिल हो गया, अब कैसे फोन बंद करूं? तो भाई उस फोन की आवाज से पूरे नमाजी को तशवीश हो रही, सबका ध्यान बढ़ जाता है, खुशू खुजू बिल्कुल खत्म हो जाता है। और इमाम साहब अगर करात कर रहे हो तो उनकी करात में भी खलल होता है, बामता करात में भूल हो जाती है, बामता इसकी वजह से रकात में भूल हो जाती है। और ये चीज ऐसी है जो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर भी पेश आई। यहां तक का वाकया है कि एक साहब जल्दी जल्दी वजू करके नमाज में शरीक हो गए, अच्छा वजू नहीं किया और आपको नमाज में भूल वाकई हुई। तो आपने इशारत फरमाया नमाज के बाद, क्या लोगों का हाल है कि वो अच्छा वजू करके भी नहीं आते, कि उसकी वजह से नमाज पर भी असर पड़ा और नमाज में खलल वाकई हुआ, नमाज में साव हो गया, भूल हो गई। तो देखो कहां तक असर पड़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे इंतहाई खुशु खुजू के साथ नमाज पढ़ने वाले, आपकी जब नमाज पर इसका असर हो सकता है तो आम नमाजियों पर क्यों नहीं असर होगा? और इमाम के ऊपर इसका असर यकीनन होने वाला है। लिहाजा बहुत ही ज्यादा एहतियात की जरूरत है। अगर पहली रकात है और बंद नहीं हो रहा है तो नमाज तोड़ दे। बल्कि अगर और भी है, इसके बाद भी अगर हो और उसके बंद करने की सूरत नहीं हो, तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई नमाज तोड़ ले, उसकी एक रकात बाद में चली जाएगी, बाद में पढ़ ले, दो रकात छूट गए बाद में पढ़ ले। लेकिन नमाजों को तशवीश तो पैदा ना हो, खुशू खुजू तो सबका ना बढ़ जाए, सबकी नमाज तो गारत ना हो जाए। लिहाजा अगर ये अमल कर लेगा तो उम्मीद है कि यह हल्का और अहवन अमल है बनिस्बत इसके कि बार बार घंटी बजती रहे और नमाजियों की नमाज में खलल वाक़े हो। हो सकता है नमाज पढ़ाने वाला जो भी हो उसको भी खलल वाक़े हो। इमाम को तो बहुत ही ज्यादा इस सिलसिले में चीजें पेश आती रहती हैं। कोई भी इमाम हो, बहुत से लोग क्या करते हैं बेतकल्लुफी में एंड नमाज के वक्त आए, नमाज खड़े होने तैयारी कि भाई हमारे फलाह रिश्तेदार का इंतकाल हो गया, जा दुआ मगफरत करा दीजिएगा। मेरा अपना एहसास तो ये है, मैं किसी और की बात नहीं करता हूं, कि जिस किसी ने ये कहा और पर्चा लिखकर नहीं दिया तो अब पूरे नमाज में उसका ध्यान रहता है कि भाई उसका ऐलान करना, उसका ऐलान करना, ये ध्यान रहेगा। क्यों? मुसीबत ये है कि अगर ऐलान करना भूल गया, कहेंगे देखो मैंने एक बात कही, मेरी बात पर अमल नहीं किया, पहली बदगुमानी यहां शुरू कर दी उसने। और आगे बढ़ेगा कि फुलां साहब ने ऐलान करवाया था तो उनके मरहूम का ऐलान किया और मैंने कहा तो मेरा तो मुझसे दुश्मनी है, बात आगे बढ़नी शुरू हो गई, इस तरह की बात है। तो ये बहुत ही नामुनासिब हरकत है। ऐन नमाज की तैयारी हो रही, इमाम साहब जाके ऐलान कर दो, नहीं क्या भजिए में ऐलान करे, तुम तो जाहिर नमाज गारत कर रहे हो। बहुत अफसोस की बात है, बहुत ख्याल, बिल्कुल ख्याल नहीं है लोगों को नमाज किस तरह पढ़ी जाए, किस तरह। एक साहब को तो हमने इस पर भी टोक दिया है, आते हैं फौरन मुसाफा करते हैं, भाई मेरा ध्यान दूसरी तरफ, मुझे नमाज पढ़ानी है, अब मैं सोच रहा हूँ मुझे क्या पढ़ना हो जाए, अस्सलाम वालेकुम, बगैर मुसाफे चैन नहीं आता। खुदा के बंदो कुछ तो समझो, नमाज पढ़नी है, नमाज बैठे हैं, बाद में कर लेना मुसाफा, मुसाफे में क्या नुकसान है। तो इस तरह की बेजा हरकतें लोगों की होती है, जरा बराबर भी एहतमाम नहीं होता है। कोशिश करनी चाहिए नमाज में आए, हयत अली रज़ियल्लाह, हयत अली ज़ैनुल आबिदीन रहिमहुल्लाह ताला, जो अली रज़ियल्लाह ताला उनके पोते हैं, उनका तो ये हाल था, दरवाजे में दाखिल हुए चेहरे का रंग मुतग़य्यर, मैं कहां जा रहा हूं, किस दरबार में दाखिल हो रहा हूं, क्या शान है उसकी। अलामत क़यामत में मिश्कात शरीफ की रिवायत है कि एक दौर आएगा और ये क़यामत की अलामत के लोग मस्जिदों को दुनिया की बातों का मरकज बनाएंगे, ऐसे आएंगे जैसे घरों में जा रहे हैं, कोई ख्याल नहीं, कोई परवाह नहीं, बातें कर रहे हैं, बातें चल रही हैं। ये भी चीज देखने में आती है, लोग उतरते हैं नमाज के बाद, आते हैं जाते हैं, इतनी जोर जोर से बात करते हैं, बहुत से लोग सुन्नत पढ़ते हैं, उनकी नमाजों में सुन्नतों में खलल वाक़ होता है। ख्याल करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कम से कम एक नमाज तो ढंग की अदा हो जाए, इसका जितना फिक्र करेंगे इंशाल्लाह उसके असरात मुरतब होंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। खास तौर से मोबाइल फोन के बारे में जरूर याद है कि अगर किसी आदमी का मोबाइल फोन खुला रह जाए, ऑन रह जाए, नमाज में घंटी बजने लगे, तो बेहतर ये है कि अपनी नमाज तोड़कर वो उसकी घंटी बंद करे, ताकि लोगों की नमाज फासिद करने से, खराब करने से, इमाम साहब हो या कोई भी हो, उनके दिल में तशवीश पैदा हो, परेशान हो जाए, भूल जाए, उससे हजार दर्जा बेहतर है कि आदमी अपनी नमाज तोड़कर फिर बाद में शरीक हो जाए। अगर ऐसा फोन है जो एक हाथ से बंद न होता हो, अमले कलील से अगर बंद न होता हो, तो फिर यह दुरुस्त है। एक साहब के बारे में हज़रत हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह ने जब लिखा कि गुनाहे कबीरा करने के बाद दिल पर घबराहट हो जाती है, कई कई रोज तक घबराहट रहती है, और खूब गिड़गिड़ा के इस्तिग़फ़ार करने से दिल पर शर्मिंदगी छा जाती है, उसके लिए क्या करूं। फरमाया कि शर्मिंदगी और खौफ फी नफसी बहुत अच्छी चीज, शर्मिंदा होना ही चाहिए और दिल में डर पैदा होना ही चाहिए, और ये भी एक किस्म की तौबा है, मगर कमाल तौबा का ये है कि जबान से भी तज़र्रुअ हो, गिड़गिड़ाकर अल्लाह ताला से माफी मांगे कि अल्लाह ये गुनाह मुझसे हो गया, इसको तो माफ फरमा दे। बस इस रुकावट का मुकाबला तकल्लुफ और हिम्मत से किया जाए, खा कितनी ही तकलीफ हो, मगर उस रुकावट पर अमल न किया जाए और जबान से भी अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ और इस्तिग़फ़ार किया जाए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला गुनाह माफ फरमा देंगे। एक शख्स ने अर्ज किया कि हम कारखाने में मुलाजिम हैं और हमें नमाज के लिए छुट्टी नहीं मिलती है, तो हम क्या करें। तो साहिब लोगों की, यानी जो बॉस होता है, जो जिम्मेदार होता है, उससे चोरी छुप कर हम नमाज अदा करते हैं, तो आया नमाज हो जाती है या नहीं होती। इरशाद फरमाया कि नमाज हो जाती है, नमाज का वक्त शरान इजारे से मुस्तस्ना है, यानी उसने आपको मुलाजिम रखा है, आप उसकी मुलाजमत कर रहे हैं, तो जितनी देर में आप नमाज पढ़ें उसमें इजाजत है कि आपको उससे गोया पूछने की जरूरत नहीं है, यानी आप उतना वक्त नमाज में इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर लंबे चौड़े वजीफे पढ़कर काम में हरत ना करें। यही फरमा दिया, भाई वजीफे नमाज तो पढ़नी है, चार रकात फर्ज अदा करनी है, दो रकात, तीन रकात, बस उतनी अदा करके आप फौरन काम में लग जाए। और अगर तुमने काम ठेके पर लिया, ठेके का मतलब यह कि भाई इतना काम करोगे इतनी मजदूरी मिल जाएगी, तो फिर तो कोई शुबा ही नहीं है, आदमी उसमें आजाद होता है कि भाई मुझे काम पूरा करना है, ये काम मैं पूरा करूंगा, उसके बाद मुझे मजदूरी मिलनी है, अब काम हो चाहे चार घंटे में करे चाहे पांच घंटे में करे, तो दरमियान में नमाज का वक्त अगर आ गया तो नमाज के लिए आजादी के साथ पढ़ सकता है, काम पूरा करेगा, उजरत उसकी मिल जाएगी। एक साहब ने इम्तिहान की कामयाबी के लिए हजरत से वजीफा पूछा और तावीज भी मांगा, तो हजरत ने तावीज तो नहीं दिया लेकिन तहरीर फरमाया कि रोजाना या अलीमो 150 मरतबा बाद नमाज फज्र पढ़ लिया करो, तो इससे उसमें गोया कामयाबी मिलेगी। और इम्तिहान के रोज उसकी और कसरत रखो और ज्यादा पढ़ लो। एक साहब ने अर्ज किया कि मुझे बवासीर की शिकायत है जिनको तकलीफ हो जाती है और खून निकलता है इस्तिंजा खाने में जाते हुए, तो फरमाए कि बाद नमाज फज्र 41 बार 41 टाइम अल्हम्द शरीफ पानी पर दम करके पिया कीजिए। यह हजरत ने इलाज ही बता दिया। एक साहब ने लिखा है कि मामूलात जो वजीफा दिया है जो करने को कहा है आपने वो पूरे तौर पर वक्त पर अदा नहीं होते, कभी अदा होते हैं कभी नहीं होते, सख्त परेशानी और नदामत होती है। जवाब में तारीफ फरमाया कि ये परेशानी और नदामत भी नफा में मामूलात से कम नहीं है। अगर बिलफर्ज आपके मामूलात छूट गए उस पर आपको अफसोस हो रहा है, रंज हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मैं कर रहा हूं ये हरकत, तो इंशाल्लाह इसका भी फायदा मुरतब होगा। नुकसान तो ये है कि आदमी ना करे ना उस पर अफसोस हो ना रंज हो। और फिर दूसरा इलाज ये है कि अगर पूरा मामूल अदा ना हो आधा कर ले पाओ कर ले, तो कम से कम कुछ तो मामूल जरूर अदा कर ले। हमारे हजरत मुर्शिद शाह बौरक ने फरमाया कि भाई अगर कभी पूरा खाना ना मिले तो नाश्ते से भी काम चलाया जा सकता है। नाश्ते खाने का वक्त हो गया खाना नहीं मिला लेकिन नाश्ते जैसी चीज कुछ मिल गई हाथ में आ गई तो जाहिर है कि उससे भी काम तो चल जाएगा ना, कुछ घंटों के लिए वो काम दे देगा। तो फरमाया खाने का मौका ना मिले नाश्ते से काम ले ले। मतलब ये कि अगर पूरा ना कर पाए तो आधा तो जरूर कर ले, पाव जरूर कर ले। फरमाया कसावत दिल की सख्ती है कि गुनाह से नफरत ना हो और ताअत से रग़बत ना हो। कोई गुनाह करे आदमी को नफरत ही नहीं हो तो ये दिल की सख्ती की बात है, और किसी नेक काम करने का शौक दिल में ना हो तो फिर ये गोया ताआज से रगबत ना होना ये गोया अलामत है कि दिल में सख्ती है। अल्लाह ताला ये सख्ती को बदल कर कल्ब में रिक्कत और नरमी पैदा फरमाए। बाले चंद मामूलात आज किए कि अल्लाह ताला हम सब की इस्लाह फरमाए, हमें नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए। एक और मलफूज सामने आ गया, फरमाया जो हक का तालिब हो जिसको अल्लाह ताला की तलब हो उसको किसी की नाराजगी की क्या परवाह, किसी की नाराजगी की कोई परवाह ना करे। हाँ अपनी तरफ से किसी को दुश्मन ना बनाना चाहिए, वो ये कोशिश करे कि मेरी वजह से कोई दुश्मन ना बने, मैं कोई ऐसा अमल ना करूं कोई ऐसी हरकत ना करूं कि कोई दुश्मन बने, फिर भी कोई नाराज हो हुआ करे। हक ताला मददगार है उस पर नजर रखना चाहिए, उसको राजी रखना चाहिए, बल्कि बाद औकात तो खल्क की नाराजी सबब हो जाता है बहुत आफात से बचने का। कितनी आफात से आदमी बच जाता है, भाई कोई आदमी नाराज मिलता ही नहीं चलो बहुत अच्छा, तो उसकी वजह से जो आफतें पेश आती है उससे हिफाजत हो जाती है। कितने बड़े नुक्ते की बात फरमा दी। खुलासा यह है कि आदमी नारे को राजी करने की परवाह करे ना नाराज करने की फिक्र करे, वह अपने काम से काम रखे। जब इंसान अपने काम से काम रखेगा अल्लाह ताला उस पर नजर फरमाएंगे मदद फरमाएंगे। सुभान अल्लाह चंद
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله 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 لا إله
اللهم
اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم انك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اسم والعصمه من كل ذنب. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا ضرا الا كشفته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك الظن الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم سقي بناك ومعاف فرما اكبر بر امتك ورحيم فرما. اللهم سب کو دین و دنیا کی عافیت نصیب فرما. ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرما. پوری امت مسلمہ کے ساتھ خیر کا کرم کا معاملہ فرما. جہاں جہاں عالم میں مسلمان جس پریشانی کے اندر مبتلا ہوں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما. اجتماعی انفرادی سب کے حالات درست فرما. اللہ ذاتی حالات ہوں اللہ باہر کے حالات ہوں اللہ سب میں مسلمانوں کے بھرپور مدد فرما. اللہ پورے عالم میں امن و امان قائم فرما. اللہ نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. نفس و شیطان کے راہ پر چلنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہمارے ساتھ خیر کا کرم کا معاملہ فرما. جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کامل عطا فرما. پریشان حال پریشان دور فرما. مقروض امر قضا ادا فرما. اے اللہ جتنے بھی اصحاب حاجات ہیں ان کے جملہ حاجات پوری فرما. جہاں جہاں مسجدیں بن رہی مدرسے بن رہے مراکز دینیہ کے تعمیر کا کام جاری ہے اللہ سب جگہ تعمیر کو مکمل فرما. ہماری ہونے والی مسجد کو بھی اللہ خیر و خوبی کے ساتھ مکمل فرما. اللہ اس کی تمام ضروریات خزانے غیب سے نظام فرما. اللہ جو کچھ ہو چکا اس کو قبول فرما اور آئندہ جو کام باقی اس میں آسانی فرما. ہر طرح کی رکاوٹ دور فرما. اللہ جتنے ظاہری باطنی اسباب کی ضرورت ہے اس کا انتظام فرما اور اللہ سہولت کے ساتھ تمام کام آئندہ ہو سکیں. اللہ اس کی توفیق عطا فرما. اپنی عبادت کے لیے اپنے ذکر کے لیے اپنے علم کے نشر کے لیے اللہ اپنے دین کی تمام خدمات کے لیے اس جگہ کو قبول فرما. اور جہاں جہاں اللہ ہمارے اکابر اور بزرگان دین کا کام کر رہے ہیں اللہ ان کے تمام عمل کو قبول فرما. اخلاص للہ عطا فرما. ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. اور جملہ مرحومین کے اللہ بال بال مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم.